नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। चाय के जाने माने कारोबारी पराग देसाई का रविवार शाम को एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। देसाई वाघ बकरी टी ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। उनकी उम्र तकरीबन 49 साल थी। 15 अक्टूबर को मॉर्निंग वॉक के बाद जब वो घर लौट रहे थे, तभी आवारा कुत्तों के एक झुंड ने उन पर हमला कर दिया। उसके बाद वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उनका एक जाने माने अस्पताल में इलाज चल रहा था। बताया जाता है कि कुत्तों के हमले में गिरने की वजह से पराग के सिर में गंभीर चोट आई थी। घर के बाहर एक सुरक्षा गार्ड ने उनके परिवार के सदस्यों को घटना के बारे में बताया। उसके बाद उन्हें शेल्बी अस्पताल ले जाया गया। शेल्बी अस्पताल में एक दिन की निगरानी के बाद उनको सर्जरी के लिए जाइडिस अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि रविवार को इलाज के दौरान ब्रेन हैमरेज के कारण उनकी मौत हो गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर में आई चोट उनके लिए जानलेवा साबित हुई। चोट का इलाज करने की कोशिश हुई पर यह कामयाब नहीं हो सकी। प्रमुख ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का एकीकृत घाटा बीते वित्त वर्ष में बढ़कर 4,890.6 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। व्यापार आसूचना मंच टॉफलर द्वारा उपलब्ध कराए गए वित्तीय आंकड़ों में ये जानकारी दी गई। वॉलमार्ट समूह की ई कॉमर्स कंपनी को वित्त वर्ष 2021-22 में 3,371.2 करोड़ रुपए का एकीकृत घाटा हुआ था। एकल आधार पर बीते वित्त वर्ष में फ्लिपकार्ट का शुद्ध घाटा बढ़कर 4,839.3 करोड़ रुपए रहा है। फ्लिपकार्ट की वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए उसका एकल शुद्ध घाटा 44% बढ़कर 4,839.3 करोड़ रुपए रहा, जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष में ये 3,362.4 करोड़ रुपए रहा था। समीक्षाधीन वित्त वर्ष के लिए कंपनी की एकीकृत शुद्ध कुल आमदनी 9.4% बढ़कर 56,012.8 करोड़ रुपए हो गई, जो वित्त वर्ष 2021-22 में 51,176 करोड़ रुपए थी। कंपनी की एकल शुद्ध आमदनी एकीकृत आमदनी के बराबर थी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 24 अक्टूबर से सऊदी अरब की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान रियाद में वरिष्ठ नेताओं तथा कारोबार जगत के लोगों से मुलाकात करेंगे। सोमवार को जारी आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई। मंत्री दोनों देशों के बीच व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा कर सकते हैं। गोयल सऊदी अरब के रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 7वें संस्करण में हिस्सा लेंगे। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार वह ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद सहित वाणिज्य मंत्री माजिद बिन अब्दुल्ला अल कस्साबी, निवेश मंत्री खालिद ए अल फलीह, उद्योग एवं खनिज संसाधन मंत्री बांदर बिन इब्राहिम अल खोरायफ और गवर्नर पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड यासिर रुमैयान सहित अन्य गणमान्य लोगों से मुलाकात करेंगे। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने अपने नए उद्यम निसर्ग की सोमवार को शुरुआत की। नया उद्यम में बड़े कार्यक्रमों और बौद्धिक संपदा को बढ़ावा दिया जाएगा। ये मौजूदा आईपी में विशेष खंडों को पेश करेगा और साथ ही नए मंच विकसित तथा तैयार करेगा। अनुष्का और विराट एक संयुक्त बयान में कहा कि निसर्ग व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से उनके मूल्यों और दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करता है। बयान के अनुसार कंपनी के शीर्ष प्रबंधन में सीईओ ताहा कॉबर्न कूटे शामिल हैं, जो वैश्विक संचालन एवं रणनीतिक साझेदारी का नेतृत्व करते हैं। शिवांक सिद्धु रणनीतिक विपणन कार्यक्रम और गठबंधनों की देखरेख का काम संभाल रहे हैं। वहीं मुख्य परिचालन अधिकारी अंकुर निगम वित्त कानूनी व लेन देन संबंधी मामले देखेंगे। जयपुर की खुदरा आभूषण कंपनी मोती सन्स ज्वेलर्स ने अपने आईपीओ से पहले 33 करोड़ रुपए जुटाए। कंपनी ने ये राशि व्यक्तिगत तथा संस्थागत निवेशकों से जुटाई है। इनमें सुनील कोठारी एंड सन्स, मनीष पारख, ईशा पारख, मनीष पारख, एचयूएफ, राजेश कुमार काबरा, जगदम्बा कोल हाउस, प्रभुदास लीलाधर एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, रेडी प्रिंट इंटरनेशनल LLP और राजन प्रॉपकॉन प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। शनिवार को जारी एक सार्वजनिक नोटिस के अनुसार आभूषण कंपनी ने 55 रुपए प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर 33 करोड़ रुपए की कुल राशि के लिए आईपीओ से पहले 60 लाख शेयरों की पेशकश की थी। पिछले कई सालों से चल रहा इसराइल हमास संघर्ष अब युद्ध का रूप ले चुका है। इसके कारण दोनों पक्षों को काफी नुकसान हुआ है। इसने व्यापार को भी प्रभावित किया है। भारत और इसराइल के बीच सामानों की आपूर्ति पर भी असर पड़ा है। इसराइल के कृषि समुदाय और संबंधित उद्योगों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। भारत इसराइल का एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार है, जो मुख्य रूप से गैर कृषि उत्पादों का कारोबार करता है। हालांकि मौजूदा संघर्ष से इसके प्रभावित होने की संभावना कम है। पिछले दशक में इसराइल की जनसंख्या में प्रतिवर्ष लगभग दुगने की वृद्धि हुई। हालांकि उसके GDP में कृषि क्षेत्र का योगदान 2020 में 1.1% से घटकर 2021 में कुल रोजगार का 0.9% हो गया। इसराइल की अर्थव्यवस्था अनाज और तिलहन जैसी प्रमुख कृषि वस्तुओं के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर करती है। रियल एस्टेट कंपनी ओबेरॉय रियलिटी चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में बिक्री बुकिंग 17% घटकर 965 करोड़ रुपए रही। कंपनी की पिछले साल समान अवधि में बिक्री बुकिंग 1156 करोड़ रुपए थी। ओबेरॉय रियलिटी द्वारा 20 अक्टूबर को शेयर बाजार को दी जानकारी के अनुसार जुलाई सितंबर अवधि में 151 इकाइयों की बुकिंग हुई, जबकि एक साल पहले समान अवधि में 132 इकाइयों की बुकिंग हुई थी। यानी कंपनी की बिक्री बुकिंग इस वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में 220,828 वर्ग फुट रही, जबकि एक साल पहले की अवधि में ये 233,947 वर्ग फुट थी। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।